ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा में आज वायु प्रदूषण पर सदन में पेश सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हुआ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कानून का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाएगी, जिसमें जनता को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से भाग रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि यह रिपोर्ट बताती है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों की वजह से शहर के लोगों की सेहत को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है।
दिल्ली को व्हीकल से दूर रखा, कैसे मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकारों की कमी रही। जो काम करने चाहिए थे वो किए नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। कुल मिलाकर के दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र बार बार माननीय सदस्यों ने किया कि दिल्ली की उम्र घट गई, दिल्ली को बीमारियां लग गई और वो नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आर्थिक रूप में नहीं की जा सकती।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो गया। 7 दिवसीय इस सत्र में नई सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। दिल्ली में 27 वर्ष बाद भाजपा सरकार के पहले बजट में बिजली, सड़क, पानी, सीवर, महिला सशक्तिकरण और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क का विकास, उद्योग और निवेश, स्वच्छता, यमुना स्वच्छता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य विस्तार पर केंद्रित बताया। इस बजट सत्र में विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज और दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर लंबित रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। आज अंतिम दिन की कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में संसद भवन के पास प्रदर्शन किया। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों के कल्याण और अधिकारों के लिए है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनसे अधिकार छीने गए हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार और चोरी बंद हो जाएगी और वंचित मुसलमानों को उनके अधिकार मिलेंगे।
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, ये गरीब मजलूम मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए है। ये बिल उन महिलाओं की तरक्की के लिए जिनके अधिकार छीने गए हैं, ये उन गरीब बच्चों की बेहतरी के लिए जिनको रोजगार के अवसर नहीं दिए गए मुसलमान समाज ने। और इस वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद जो इस वक्फ बोर्ड के नाम पे चोरी और भ्रष्टाचार होता है वो खत्म होगा। जिन प्रॉपर्टीज में अस्पताल स्कूल बनने चाहिए थे वो चीजें सामने आएंगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर से आए 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर विशेष व्याख्यान में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर होती है और देश की व्यवस्थाओं में समय अनुसार अनुकूलन के लिए सुधार होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए हितकारी साबित होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हों तो समय और संसाधन की बचत होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन डीएसजे की निदेशक प्रोफेसर भारती गौरे के नेतृत्व में किया गया। केंद्र ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देश भर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं, इनमें से 477 विद्यालय संचालित हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में पढ़ाने के लिए 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरूआत की गई थी। भारतीय नौसेना ने आज 6 मेगावाट क्षमता के मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए मेक वन श्रेणी के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ किया गया। इस समझौते के अंतर्गत 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले प्रोटोटाइप डीजल इंजन का विकास 270 करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि GEM मंडप भाग लेने वाले स्टार्टअप के लिए चुनिंदा सरकारी खरीदारों के साथ जुड़ने और बाजार अनुकूल अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर और 10 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगपति शामिल होंगे। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप के लिए अवसरों का पता लगाया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट जानकारी के लिए विशेष मास्टर क्लास भी आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा हुआ है।
ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं शामिल होगा।
इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार संविधान को कमजोर करना चाहती है, अल्पसंख्यकों को बदनाम और भारतीय समाज को बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए ये विधेयक लाई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रस्तावित कानून को गलत, तर्कहीन और मनमाना करार दिया। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज वायु प्रदूषण पर सदन में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। शादरा से विधायक संजय गोयल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट बताती है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण मापक उपकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट तक में गड़बड़ी थी, जिसके कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पर वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने का आरोप लगाती थी, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार बनते ही आप पार्टी हरियाणा सरकार पर आरोप लगाने लगी। श्री महावर ने आरोप लगाया कि ऑड इवन और रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अशोक गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, जिससे वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकी और वायु प्रदूषण में कमी आई। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज 77 डिपो हैं और ईवी चार्जिंग को बढ़ाकर 44,000 तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने 10 से 12 साल वाली बसों को हटाया जाएगा। इसके अलावा बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों के प्रदूषण की जांच की जाएगी। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। आप विधायकों ने हाथ में पोस्टर लिए और इस्तीफे की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों से बार बार शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन आप विधायक शांत नहीं हुए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने प्रवीण कुमार, विपक्ष की नेता आतिशी, आप विधायक संजीव झा, अनिल झा, मुकेश अहलावत और जरनैल सिंह सहित कई अन्य सदस्यों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हो गई। सदन से निकाले जाने के बाद आप विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करने लगे। इसे लेकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रूल बुक के अनुसार जिन सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाता है, उन्हें विधानसभा परिसर से भी बाहर निकाला जाता है। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने याद दिलाया कि दिल्ली के दंगों में शामिल रहे लोग विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दंगे आम आदमी पार्टी के लोगों ने करवाए थे। वहीं शून्यकाल के दौरान नरेला से विधायक राजकरण खत्री ने सिंघू बॉर्डर पर रोहिंग्या बस्ती के बसने और उनके द्वारा कथित लूटपाट किए जाने का मामला उठाया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सतीश उपाध्याय ने कहा कि कनेक्शन काटने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा में आज वायु प्रदूषण पर सदन में पेश सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हुआ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कानून का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।